آگے سبق دیکھیے بھائی. المرفوعات جمع المرفوع الى المرفوعات لان موصوفه الاسم وهو مذكر لا يعقل ويجمع هذا الجمع مطردا صفه المذكر الذي لا يعقل كالصافنات للذكور من الخيل وجمال سبحلات أي زخمات وكالأيام الخاليات. گزشتہ اسباق میں غیر منصرف کی بحث چل رہی تھی اور اسباب منع صرف جو کہ نو ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد صاحب کافیہ نے غیر منصرف سے متعلق دو ضابطے ذکر فرمائے. پہلا ضابطہ یہ ذکر فرمایا کہ ہر وہ غیر منصرف جس کے اندر ایک سبب علمیت ہو جب اس میں سے علمیت کو ختم کر دیا جائے گا تو وہ منصرف بن جائے گا, اور پھر احمرہ جیسے الفاظ کا اس سے استثناء کیا تھا اور فرمایا کہ احمرہ جیسے الفاظ کے اندر امام سیبوی اختلاف کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ احمرہ جیسے لفظوں سے علمیت ختم کر دیں تو پھر بھی وہ منصرف نہیں بنیں گے بلکہ وہ غیر منصرف ہی رہیں گے. میں نے آپ کو بتلایا تھا احمرہ سے مراد ایسے الفاظ ہیں جو قبل العلمیت بھی غیر منصرف ہوں اور ان میں ایک سبب جو ہے وہ وصف ہو. تو احمرہ قبل العلمیت غیر منصرف تھا, ایک سبب اس میں وصف ہے اور ایک سبب وزن فعل ہے. پھر اس کے بعد اس کو علم بنایا گیا تو جب علمیت آئی تو وصفیت ختم ہو گئی, کیونکہ علم دلالت کرتا ہے ذات معین پر اور وصف دلالت کرتا ہے ذات غیر معین پر, تو ایک ہی لفظ میں یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے, ورنہ تو لازم آئے گا کہ ایک ہی لفظ معین پر بھی دلالت کر رہا ہے اور غیر معین پر بھی دلالت کر رہا ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا. تو علمیت جب آئی تو وصفیت احمرہ جیسے لفظوں سے ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد جب علمیت کو ختم کیا جائے گا تو امام اخفش فرماتے ہیں کہ اب یہ منصرف ہو گیا, جبکہ امام سیبوی اس کے اندر وہ جو وصفیت زائل ہو گئی تھی نکرہ بنانے کے بعد اب اس میں دوبارہ اس وصفیت اصلیہ کا اعتبار کرتے ہیں. تو امام سیبوی فرماتے ہیں کہ بعد تنکیر بھی یہ غیر منصرف ہے, ایک سبب اس کے اندر وزن فعل ہے اور دوسرا وصفیت اصلیہ ہے, کہ یہ اصل وضع میں کیا تھا, وصف تھا. اس پر پھر امام سیبوی پر اشکال ہوا کہ آپ زوال وصفیت کے بعد بھی وصفیت کا اعتبار کر رہے ہیں, پھر تو آپ کو حاتم جیسے لفظوں کو غیر منصرف قرار دینا چاہیے. جس طرح آپ عالمیت کے ختم ہو جانے کے بعد اس زائل شدہ وصفیت کا اعتبار کرتے ہیں تو عین عالمیت کی حالت میں بھی آپ کو وصفیت کا اعتبار کرنا چاہیے. جب عالمیت آئی تو وصفیت زائل ہو گئی, لیکن آپ تو زوال کے بعد بھی وصفیت کا اعتبار کرتے ہیں تو عین علمیت کی حالت میں بھی آپ کو اس زائل شدہ وصفیت کا اعتبار کرنا چاہیے اور حاتم جیسے لفظوں کو غیر منصرف قرار دینا چاہیے. حاتم جیسے لفظوں سے کیا مراد ہے, میں نے آپ کو بتلایا تھا وہ لفظ جو اصل میں تو وصف تھے اور پھر بعد میں علم بن گئے. تو حاتم اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور پھر اس کو علم بنا دیا گیا. تو اب ایک سبب علمیت ہے اور اس کے ساتھ اگر وصفیت اصلیہ کا اعتبار کر لیا جائے تو اس کو غیر منصرف قرار دینا پڑے گا. تو امام سیبوی پر یہ اشکال ہوتا تھا کہ آپ کو حاتم جیسے لفظوں کو غیر منصرف قرار دینا چاہیے اور عین علمیت کی حالت میں بھی آپ کو اس زائل شدہ وصفیت کا اعتبار کرنا چاہیے. تو صاحب کافیہ نے امام سیبوی کی طرف سے اس اعتراض کو رد کیا اور اس کا جواب دیا کہ نہیں بھائی, امام سیبوی پر حاتم جیسے لفظوں کا اعتراض نہیں ہو سکتا, اس لیے کیونکہ اس صورت میں دو متضاد چیزوں کا اعتبار کرنا لازم آئے گا ایک ہی حکم کے اندر. علمیت اور وصفیت دونوں آپس میں متضاد ہیں, میں نے ابھی بتایا یہ جمع نہیں ہو سکتے, تو ان دونوں کا اعتبار کرنا پڑے گا ایک ہی حکم کے اندر, یعنی غیر منصرف بنانے میں. तो एक लफ्ज को गैर मुनसरिफ बनाना चाहते हैं आप, यानी एक ही हुक्म है और उसमें आप दो मुतजाद चीजों का एतबार कर रहे हैं और यह तो दुरुस्त नहीं है भाई। और फिर उसके बाद आखिर में साहिब काफिया ने दूसरा जाब्ता भी जिक्र फरमाया गैर मुनसरिफ के बाब से मुतालिक। दूसरा जाब्ता यह जिक्र फरमाया कि जो गैर मुनसरिफ का सारा बाब जो है इस पर जब अलिफ लाम दाखिल हो जाए या इसकी इजाफत कर दी जाए तो फिर यह कसरा के साथ मजरूर होगा। तो जर तो गैर मुनसरिफ पर वैसे भी आता है, जब इस पर कोई हर्फ जर आए या ये मुजाफिले वाके हो तो गैर मुनसरिफ मजरूर होता है, लेकिन गैर मुनसरिफ का जर फतहा की सूरत में आता है। किसकी सूरत में? फतहा की सूरत में। जाअनी उमरु, देखो ये रफा है बगैर तनवीन के। रअयतु उमरा, ये नसब है बगैर तनवीन के। और मररतु बिउमरा, इसमें देखो बा जारा दाखिल हो रही है लफ्ज उमर पर, तो ये इस वक्त मजरूर है। गैर मुनसरिफ का जर किसके साथ आता है? फतहा के साथ। लेकिन जब इस गैर मुनसरिफ पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए या इसकी इजाफत कर दी जाए तो फिर इस पर जर जो है वो कसरा की सूरत में आएगा। तो मसलन मररतु बिल उमरी या मररतु बिउमरिकुम, तो अलिफ लाम और इजाफत की सूरत में देखो गैर मुनसरिफ पर कसरा आ जाता है। तो जब गैर मुनसरिफ पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए या जब उसकी इजाफत कर दी जाए तो फिर यह मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ? साहिब जामी ने आपको बतलाया कि फिर इसमें उलमाए नहव के तीन गुरोह हैं भाई। बाज फरमाते हैं कि अलिफ्लाम और इजाफत के बाद गैर मुनसरिफ मुतलकन मुनसरिफ बन जाता है, जबकि बाज उलमा फरमाते हैं कि इजाफत के बाद भी यह मुतलकन गैर मुनसरिफ रहता है। पहले भी गैर मुनसरिफ था, अलिफ्लाम और इजाफत के बाद भी गैर मुनसरिफ है, जबकि बाज उलमाए नहव फरमाते हैं कि अलिफ्लाम और इजाफत के बाद फिर उस लफ्ज में गौर किया जाएगा। अगर अलिफ्लाम या इजाफत के बाद अभी भी उसमें दो सबब मौजूद हैं गैर इंसिराफ के तो फिर यह अभी भी गैर मुनसरिफ है, और अगर अलिफ्लाम या इजाफत की वजह से दोनों सबब खत्म हो गए या एक सबब खत्म हो गया तो अब फिर यह मुनसरिफ बन जाएगा। और साहिब जामी ने आपको यह भी बतलाया कि अलिफ्लाम और इजाफत की वजह से आलमियत खत्म हो जाती है। तो अगर कोई लफ्ज गैर मुनसरिफ था और उसमें एक सबब आलमियत था तो जब उस पर अलिफ्लाम आएगा या उसकी इजाफत होगी तो उससे आलमियत खत्म हो जाएगी। जब आलमियत खत्म हुई अब उस लफ्ज में दो सबब चूंकि नहीं है गैर इंसिराफ वाले तो वो मुनसरिफ बन जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए भाई, कहते हैं अल मरफूआत जमउल मरफूइल अल मरफूआति लि अन्न मौसूफहु लिस्म व हुवा मुज़क्करुल ला याक़िल। गैर मुनसरिफ की बहस मुकम्मल होने के बाद आगे साहिब काफिया मरफूआत मनसूबात और मजरूरात का बयान शुरू करेंगे। अब उनमें से साहिब काफिया ने सबसे पहले मरफूआत को जिक्र किया और उसके बाद फिर वो मंसूबात को जिक्र करेंगे और आखिर में मजरूरात को जिक्र करेंगे। तो साहिब काफिया ने मरफूआत को क्यों मुकद्दम किया? उसकी वजह यह है कि ये जो मरफूआत हैं ये कलाम के अंदर उम्दा वाके होते हैं भाई। ये मरफूआत कलाम के अंदर उम्दा वाके होते हैं। इसको अच्छी तरह समझ लें भाई, उम्दा किसे कहते हैं कलाम के अंदर? उमूमन शुरुहात उठाएंगे तो वो उमूमन यही लिखते हैं कि उम्दा जो कलाम में आला है यानी मुस्नद इलैह। एक मुस्नद होता है और एक मुस्नद इलैह। मुस्नद इलैह वो है जिसके बारे में बात की जाए और मुस्नद जो बात की जाए, तो मुस्नद इलैह कलाम में कहते हैं आला है, इसलिए इसको उम्दा कहते हैं। लेकिन ये दुरुस्त नहीं भाई, समझ लें उम्दा किसे कहते हैं। याद रखो यहां दो लफ्ज हैं, एक है उम्दा उम्दतुन और एक है फजलतुन। फजलतुन भाई, ये लफ्ज फजलतुन पढ़ना भाई, फजला का माना है जायद जायद, तो ये लफ्ज फजलतुन है भाई। तुलबा उमूमन इसको फजला पढ़ते हैं भाई, फजला नहीं, ये फजला लफ्ज है भाई। उम्दा और फजला ये एक दूसरे के मुकाबिल हैं। उम्दा का माना है कलाम का आला हिस्सा
और फजला का माना है जायद, यानी यह कलाम का जायद हिस्सा है, अगर यह न भी हो तो भी कलाम दुरुस्त है। तो उम्दा किसे कहते हैं? उम्दा कलाम का बुनियादी आला हिस्सा जो है, यूं कहें कलाम का बुनियादी जुज जो है उसको उम्दा कहते हैं। और कलाम के बुनियादी जुज दो हैं, एक मुस्नद एक मुस्नदिल। तो मुस्नद भी उम्दा है और मुस्नदिल भी उम्दा है। जैसे मुब्तदा और खबर, मुब्तदा क्या है? मुस्नदिल। और खबर क्या है? मुस्नद। तो ये दोनों उम्दा हैं। इसी तरह जुमला फेलिया के अंदर फेल और फाइल, फेल क्या है? मुस्नद। और फाइल क्या है? मुस्नदिल। तो ये दोनों उम्दा हैं। इसी तरह इन्ना का इसम और खबर, इन्ना किस पर दाखिल होता है? मुब्तदा और खबर पर। तो इन्ना का इसम मुब्तदा के दर्जे में है और उसकी खबर मुब्तदा की खबर के दर्जे में है। तो इन्ना जैदन कायमुन, तो इन्ना का इसम क्या? जैदन। ये मुस्नदिल है और कायमुन इसकी खबर है इन्ना की। तो ये भी क्या है? कलाम में उम्दा है। या इसी तरह काना का इसम और खबर, काना का तो काना का इसम क्या होता है? मुस्नदिल है। और काना की खबर क्या होती है? मुस्नद होती है। तो उम्दा किसे कहते हैं? कलाम का उम्दा और आला और बुनियादी जुज जो है उसको उम्दा कहते हैं, और वो दो हैं, मुस्नद भी और मुस्नद इले भी। यानी ये कलाम के वो जुज हैं कि जिनके बगैर कलाम पूरा नहीं होता, और इनमें से किसी को हजफ करना जायज नहीं इल्ला ये कि कोई दलील उसके कायम मकाम हो जाए। अगर आप उम्दा को हजफ करेंगे तो कलाम फासिद हो जाएगा, कलाम में खलल आ जाएगा, उसका पूरा माना ही समझ में नहीं आएगा। जैदुन कायमुन, जैदुन है मुब्तदा और कायमुन है उसकी खबर। तो जैद को हजफ कर दें, सिर्फ कायमुन कहें, बात किसी को समझ में नहीं आएगी। या सिर्फ जैद कहें, कायमुन को हजफ कर दें, तो बात किसी को समझ में नहीं आएगी। तो उम्दा कलाम का वो आला और बुनियादी जुज कि उसको हजफ कर दें तो कलाम में खलल आ जाए, कलाम फासिद हो जाए, और उसको अगर हजफ करना भी पड़े तो वहां कोई दलील कायम करना पड़ेगी, कोई करीना ऐसा होना चाहिए जिससे सुनने वाले को पता चल जाए कि यहां पर यह मुब्तदा महजूफ है या खबर महजूफ है। तो उम्दा क्या है कलाम में? मुस्नद और मुस्नदिल। जुमला इस्मिया में मुस्नदिल को क्या कहते हैं? मुब्तदा। और मुस्नद को क्या कहते हैं? खबर। ये दोनों उम्दा हैं। इसी तरह जुमला फेलिया के अंदर फेल है मुस्नद और फाइल है मुस्नदिल, ये दोनों भी क्या हैं? उम्दा हैं। बात समझ में आ गई। इसी तरह मैंने इन्ना और काना वगैरह की मिसाल दी, मतलब जो भी मुस्नद और मुस्नदिल के दर्जे में है वो सब क्या है? उम्दा है कलाम के अंदर। जबकि इनके अलावा जो है उनको फजला कहते हैं। फजला का माना जायद चीज, जैसे मफाइल खमसा है, मफूल बिही है, मफूल फी है, मफूल लहू है, मफूल माहू है, और मफूल मुतलक है। ये सारे क्या हैं? ये जायद हैं। इसी तरह हाल है, तमीज है वगैरह, और जितनी चीजें आ गई वो सब क्या हैं? फजला हैं, जायद हैं। यानी इनको हजफ कर दें तो कलाम में कोई खलल और खराबी नहीं आती। जैसे देखो जराबा जैदुन आमरान, जराबा जैदुन आमरान, जैद ने अमर की पिटाई की, जराबा फेल, ये मुस्नद है और जैदुन मुस्नदिल फाइल है, और ये आमरान ये जो मफूल बिही आया ये जायद है, इसको आप हजफ भी कर दें कलाम फिर भी पूरा है। जराबा जैदुन, जैद ने पिटाई की, कलाम में कोई खराबी आई? कोई खराबी नहीं आई, सिर्फ मफूल का पता नहीं चला आपको, कोई हरज नहीं। जराबा जैदुन से इतना तो पता चल गया कि पिटाई हुई है, जैद ने पिटाई की है, कोई ना कोई मजरूब है, लेकिन वो कौन है मैं आपको नहीं बताना चाहता, मैंने उसको हजफ कर दिया। तो मुस्नद और मुस्नदिल के अलावा कलाम के बाकी अज्जा क्या कहलाते हैं? फजला। और इनको फजला इसलिए कहते हैं कि इनके बगैर भी बात पूरी हो जाती है। लेकिन एक गहरी बात याद रखना, कभी कभार फजला भी जरूरी हो जाता है। फजला का यह माना नहीं कि वो बिल्कुल ही बेकार है भाई, नहीं नहीं बिल्कुल बेकार नहीं, मतलब यह था कि उसको हजफ भी कर दें तो कलाम फिर भी ठीक रहता है। लेकिन बाज औकात फजला भी जरूरी हो जाता है, उसका जिक्र करेंगे तो बात ठीक होगी, उसको जिक्र नहीं करेंगे तो बात ठीक नहीं होगी। मवाके मुख्तलिफ हैं, कहीं फजला जायद होता है और कभी कभार फजला जरूरी भी बन जाता है, उसको अगर हजफ करेंगे तो कलाम का माना ही खराब हो जाएगा। जैसे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वला तमशी फिल अर्ज मरहा,
और तुम न चलो जमीन पर अकड़कर, मराहन अकड़कर तकब्बुर करते हुए, और तुम जमीन पर अकड़कर तकब्बुर करते हुए न चलो। तो देखो अब ये मरहन हाल है ये और ये फजला है, लेकिन अगर इसको हजफ करेंगे तो कलाम का माना ही खराब हो जाएगा। फिर तो कलाम क्या बन जाएगा, वला तमशी फिल अर्ज, और तू जमीन पर न चल। तो फिर तो माना हो जाएगा यानी अल्लाह ताला जमीन पर चलने से मना फरमा रहे हैं, हालांकि यहां अल्लाह ताला जमीन पर चलने से मना नहीं फरमा रहे बल्कि तकब्बुर करने से मना फरमा रहे हैं भाई। तो मरहन को हजफ करेंगे तो माना ही खराब हो जाएगा कलाम का। बात समझ में आ गई, तो फजला भी कभी जरूरी हो जाता है कलाम के अंदर यानी उसका जिक्र। तो हासिल कलाम यह हुआ कि उम्दा जो है कलाम का आला और बुनियादी जुज कि उसके बगैर कलाम मुकम्मल ही नहीं होता, और वह मुस्नद और मुस्नदीले को कहते हैं। जबकि फजला जो है वो कलाम का जायद हिस्सा होता है जिसको अगर हजफ भी कर दिया जाए तो भी मुस्नद और मुस्नदिले तो मौजूद हैं, कलाम फिर भी पूरा है, और कभी कभार ये फजला भी जरूरी हो जाता है और इसके बगैर कलाम का माना फासिद हो जाता है। बात समझ में आ गई। लेकिन अमूमन जब उम्दा का लफ्ज बोला जाए तो इसम के लिए बोला जाता है, किसके लिए, इसम, लिहाजा फेल को निकाल दो। तो जब उम्दा का लफ्ज बोला जाए तो तीन चीजें मुराद लेते हैं अमूमन, कौन सी, मुब्तदा, खबर और फाइल या नाई फाइल। तवज्जो है, फिर सुनो, जुमला दो किस्म पर है, एक जुमला इस्मिया एक जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया में क्या क्या है, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा है मुस्नद इलैह और खबर है मुस्नद, दोनों उम्दा हैं क्योंकि इनसे मिलकर कलाम पूरा हो जाता है। जुमला फेलिया में फेल है और आगे फाइल या नाई फाइल आएगा, फेले मारूफ हो तो फाइल आएगा, फेले मजहूल हो तो नाई फाइल। तो ये जो फेल है ये है मुस्नद, और ये जो फाइल या नाई फाइल है ये मुस्नद इले, तो ये दोनों क्या है, उम्दा। लेकिन उम्दा बोलकर अमूमन इसम मुराद लेते हैं, क्या मुराद लेते हैं, इसम। तो इसमें से एक तो फेल है जुमला फेलिया में, मुस्नद तो फेल है, लिहाजा उसको निकाल दो। अब जब मैं उम्दा का लफ्ज कहूं तो कितनी चीजें रह गई, तीन चीजें। देखो भाई, जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया के अंदर उम्दा क्या क्या, मुब्तदा और खबर। जुमला फेलिया में क्या है, फेल और फाइल या नाई फाइल, फेल को जरा निकाल दो। अब कुल कितनी चीजें रह गई, हां कुल कितनी चीजें रह गई, तीन चीजें, मुब्तदा, खबर और फाइल या नाई फाइल। फाइल या नाई फाइल ये एक ही है, एक शुमार कर लो, सिर्फ फाइल कह दो, नाई फाइल उसी के साथ है भाई। बात समझ में आ गई। तो उम्दा जब बोला जाए तो ये तीन चीजें मुराद होती हैं, क्या क्या, मुब्तदा, खबर और फाइल या नाई फाइल, ये चीजें जो हैं इनको उम्दा कहते हैं। तो बात चल रही थी कि साहिब काफिया ने मरफूआत को क्यों मुकदम किया, तो वजह मैंने आपको बतला दी कि ये मरफूआत जो हैं कलाम के अंदर उम्दा वाके होते हैं। देखो मुब्तदा मुस्नद इले है और खबर मुस्नद है और ये उम्दा हैं। मुब्तदा भी क्या होता है, मरफू, उस पर रफा आता है। खबर भी क्या होती है, मरफू, उस पर रफा आता है। और इसी तरह फेल के साथ जो फाइल या नाई फाइल आते हैं, फाइल भी मरफू होता है, नाई फाइल भी मरफू। तो देखो ये उम्दा जो हैं वो मरफू होते हैं। तो साहिब काफिया ने मरफूआत को मुकदम किया मंसूबात और मजरूरात पर, इसलिए क्योंकि रफा जो है वो उम्दा की अलामत है, और नसब और जर याद रखो ये फजला की अलामत है, किसकी अलामत है, फजला की अलामत है। तो मरफूआत चूंकि कलाम में उम्दा वाके होते हैं इसलिए सबसे पहले साहिब काफिया मरफूआत को लेकर आए। यहां तक बात समझ में आ गई। फिर एक और बात याद रखना, साहिब काफिया ने मरफूआत, मंसूबात और मजरूरात, इनमें से मरफूआत को बाकी दोनों पर मुकदम किया, तवज्जो है, और उसके बाद फिर वो मंसूबात लाए और आखिर में वो मजरूरात लाए। यहां पर साहिब जामी आपको ये नहीं बतलाएंगे कि साहिब काफिया ने मरफूआत को क्यों मुकदम किया, तवज्जो है, ये साहिब जामी नहीं बतलाएंगे, और आगे चलकर मंसूबात में बतलाएंगे कि मंसूबात को मजरूरात पर क्यों मुकदम किया है। तवज्जो है, मरफूआत में हमें नहीं बताएंगे कि मरफूआत को क्यों मुकदम किया, और मंसूबात में जाकर हमें बताएंगे कि मंसूबात को मजरूरात पर क्यों मुकदम किया है। भाई क्या वजह है, या तो वो मरफूआत में भी वजह बतलाते फिर मंसूबात में भी बतलाते फिर तो बात बनती है, लेकिन एक जगह वो जिक्र कर रहे हैं दूसरी जगह जिक्र नहीं कर रहे, तो मरफूआत के मुकदम करने की वजह उन्होंने नहीं लिखी। इसकी क्या वजह है, वजह वही नुकता है जो अभी मैंने बयान कर दिया कि मरफूआत कलाम में उम्दा होते हैं और मंसूबात और मजरूरात क्या होते हैं, कलाम में फजला होते हैं, तो जो उम्दा है जाहिर सी बात है उसको मुकदम ही होना चाहिए भाई। अलबत्ता फिर मंसूबात और मजरूरात दोनों फजला हैं, वहां सवाल पैदा होता है कि मंसूबात को मजरूरात पर क्यों मुकदम किया, तो वहां फिर वो जवाब देते हैं कि चूंकि मंसूबात ज्यादा हैं उनमें बहस ज्यादा है इसलिए पहले उसको जिक्र किया ताकि इनकी तवील बहस खत्म हो जाए, तो आखिर में सिर्फ मजरूरात रह जाएंगे और मजरूरात तो दो ही हैं, तो उनका बयान वहां पर आखिर में आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ये तो वजह थी कि मरफूआत को क्यों मुकदम किया। अब इसका एराब भाई कि अल मरफूआत, इस पर एराब कौन सा आएगा। याद रखो एक तरकीब यह है कि आप इसको खबर बना दें और इसके लिए मुब्तदा हाजी ही महजूफ निकाल लें, ऐ हाजी हिल मरफूआतु, तो हाजी ही हुआ मुब्तदा और अल मरफूआतु खबर है और खबर मरफू होती है, तो इस सूरत में अल मरफूआतु पर रफा पड़ेंगे। हां आपके जहन में आएगा कि अल मरफूआत तो जमा है और हाजी ही ये तो वाहिद मुअन्नस का इसमें इशारा है, तो मैंने आपको पहले बतलाया था कि ये जमा बतावील जमातुन किसके हुक्म में होती है, वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है, इसलिए इसके लिए वाहिद मुअन्नस का इसमें इशारा हाजी ही निकाल लेंगे। तो इबारत क्या बन गई, हाजी हिल मरफूआतु, हाजी ही है मुबतदा और अल मरफूआतु उसकी खबर है और खबर मरफू होती है। या दूसरी तरकीब के अल मरफूआतु को मुबतदा बनाओ और हाजी ही को खबर निकाल लो, अल मरफूआतु हाजी ही, तो अब अल मरफूआत मुबतदा बन गया और हाजी ही उसकी खबर बन गई भाई। तीसरी तरकीब यहां यह है कि मुबतदा हाजी ही न निकालें बल्कि हाजा निकाल लें, हाजा, और अल मरफूआत से पहले कोई मुजाफ महजूफ निकाल लें, हाजा बहसुल मरफूआती या हाजा बाबुल मरफूआती या हाजा जिक्रुल मरफूआती या हाजा बयानुल मरफूआती, कोई भी लफ्ज आप निकाल लें मरफूआत से पहले, चाहे जिक्र का लफ्ज निकाल लें, चाहे बयान का, चाहे बहस का, चाहे बाब का, तो वो मुजाफ हो जाएगा और अल मरफूआती मुजाफोन इले। तो इबारत क्या बन गई, हाजा बहसुल मरफूआती, हाजा हुआ मुबतदा और बहसु यह है खबर और यह मुजाफ है और अल मरफूआती मुजाफोन इले। तवज्जो है, फिर क्या किया गया, बहस लफ्ज को जो मुजाफ था उसको हजफ कर लिया गया और अल मरफूआत को उसका कायम मकाम कर दिया गया। किसको हजफ किया, बहस को या जिक्र को या बयान, जो भी मुजाफ था उसको हजफ कर दिया, और वह क्या था, वह मरफू था क्योंकि वह खबर बन रही थी, खबर क्या होती है मरफू, तो जब उसको हजफ किया तो अल मरफूआत उसका कायम मकाम बन गया। जब उसका कायम मकाम बना तो अब अल मरफूआती जेर नहीं पड़ेंगे, वैसे तो यह मुजाफिले था बहस के लिए लेकिन अब बहस को खत्म कर दिया, अल मरफूआत को उसकी जगह ले आए, तो अब इस पर भी रफा पड़ेंगे, क्या पड़ेंगे, रफा पड़ेंगे, क्योंकि वो जो मुजाफ महजूफ हुआ ये उसका कायम मकाम बन गया और उस पर रफा था, तो जब ये उसका कायम मकाम बना तो अब इस पर भी क्या पड़ेंगे, रफा पड़ेंगे। तो हाजा बहसुल मरफूआती, या फिर उसी तरह कर लें कि बहसुल मरफूआत को मुबतदा बना दें और हाजा को खबर महजूफ निकाल लें, आई बहसुल मरफूआती हाजा, या बयानुल मरफूआती हाजा, या जिक्रुल मरफूआती हाजा, या बाबुल मरफूआती हाजा। तो बाबुल मरफूआत वगैरह ये क्या बन गए, मुब्तदा। बात समझ में आ गई। भाई देखो ना, अब इस सूरत में हाजी ही नहीं निकालना बल्कि हाजा निकालना है, इसलिए क्योंकि हाजी ही उस वक्त हम निकालते थे जब अल मरफूआत के साथ उसको जोड़ना होता था, और मरफूआत तो जमा है, और जमा बतावीले जमातुन किसके हुक्म में है? वाहिद मुअन्नस के हुक्म में। लेकिन जब आपने मरफूआत से पहले बहस का या बयान का या जिक्र का लफ्ज निकाल लिया, तो ये बहस बयान जिक्र या बाब का लफ्ज ये तो मुफरद मुजक्कर हैं, तो इसके लिए फिर हाजा निकालेंगे, हाजा बाबुल मरफूआती। बात समझ में आ रही है? तो हाजा हो जाएगा मुब्तदा और बाबुल मरफूआत मुजाफ मुजाफिले मिलकर उसकी खबर। लेकिन मैंने फिर ये भी बताया, जब बाब का लफ्ज या जिक्र का लफ्ज निकालेंगे तब मरफूआत का लफ्ज मजरूर होगा, और जब उसको हजफ कर देंगे तो अल मरफूआत उसका कायम मकाम बन गया, तो अब इस पर रफा ही पड़ेंगे, अब जर नहीं पड़ेंगे। मुजाफ महजूफ हो और आप इस पर जर पड़ें, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। मुजाफ को जब आप निकाल लेंगे बहसुल मरफूआती, फिर तो जर पड़ेंगे, और जब बहस का लफ्ज हजफ कर दिया गया तो मरफूआत उसका कायम मकाम हो गया, तो अब इस पर रफा ही पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? तफसील में ज्यादा इसलिए बयान कर रहा हूं कि बाद शारहीन यहां लिखते हैं कि अल मरफूआत इस पर रफा भी जायज, इस पर नसब भी जायज, इस पर जर भी जायज। नहीं भाई, जर इस पर जायज नहीं। बात समझ में आ रही है? जर कब जायज होगा? जब आप बहस के लफ्ज को या बयान के लफ्ज को यहां मुजाफ निकाल लेंगे। हाजा बयानुल बयानुल मरफूआत, इस वक्त यह मजरूर है, लेकिन बयान का लफ्ज तो आपने निकाला, जब बयान को हजफ कर दिया तो अल मरफूआत को उसका कायम मकाम कर दिया, जब उसका कायम मकाम किया तो उस पर रफा था, इस पर भी क्या पढ़ेंगे? रफा। तो अल मरफूआत भाई इसको मुब्तदा भी बना सकते हैं और खबर भी। मुब्तदा भी मरफू होता है और खबर भी मरफू। और फिर मुब्तदा क्या निकाल सकते हैं? हाजा भी निकाल सकते हैं और हाजी ही भी। हाजा निकालें तो फिर बहसुल मरफूआत, फिर मुजाफ को भी महजूफ निकालना पड़ेगा। तो देखो अल मरफूआत जो है इसमें दो एराब आ गए, दो एराब, लेकिन दोनों रफा हैं। एक रफा है मुब्तदा होने की बिना पर, किसको क्या बनाओ? मुब्तदा। अल मरफूआतो हाजी ही, हाजी ही को खबर बनाओ। दूसरी सूरत यह कि हाजी ही को मुकद्दम निकाल लो और अल मरफूआतो इसको खबर बना दो, तो अब इस पर रफा किस बिना पर है? खबर होने की बिना पर है। इसी तरह हाजा बहसुल मरफूआती, हाजा बहसुल मरफूआती, इस सूरत में हाजा मुब्तदा और बहसु मरफू यह है खबर, और यह मुजाफ है, और अल मरफूआती मुजाफोन इले। तो हाजा बहसुल मरफूआती इसको खबर बना दो, या बहसुल मरफूआती हाजा इसको मुब्तदा बनाओ और हाजा को खबर। तो इस सूरत में यह मजरूर है, लेकिन जब बहस के लफ्ज को या बयान जो मुजाफ का था उसको हजफ करेंगे तो अब इस पर क्या पढ़ेंगे? रफा ही पढ़ेंगे, अब जर नहीं। मालूम हुआ अभी तक मैंने जो चार सूरतें बताई, लेकिन उन चारों के अंदर या ये मुब्तदा बन रहा है या खबर बन रहा है, तो गोया इस पर रफा ही आएगा। चाहे इसको मुब्तदा बनाओ, चाहे खबर बनाओ, चाहे इसको मुजाफिले बना दो, क्योंकि मुजाफ को जब हजफ करेंगे तो ये उसका कायम मकाम हो जाएगा, फिर भी इस पर रफा ही पड़ेंगे। और तीसरी सूरत यह है कि इस पर नसब पड़ा जाए और यह मफूल हो इकरा फेल के लिए। इकरा इल मरफूआती, इकरा फेल अमर, अंता जमीर इसके अंदर फाइल, और अल मरफूआती ये मंसूब है भाई, ये मजरूर न समझना, क्योंकि ये जमा मुअन्नस सालिम है, और जमा मुअन्नस सालिम का नसब किस सूरत में आता है? कसरा ही की सूरत में आता है, तो ये मंसूब है। तो इकरा इल मरफूआती, तो इकरा निकाल लें या खुज का लफ्ज निकाल लें, खुजिल मरफूआती के मरफूआत ले लो, या इशराइल मरफूआती के मरफूआत को शुरू करो। तो बहरहाल जो भी फेले अमर यहां निकाल लें तो ये अल मरफूआत मफूल भी ही है, मंसूब है। तो गोया तीन तरकीबें हो गईं, अल मरफूआत पर रफा पढ़ेंगे मुब्तदा होने की बिना पर, या रफा पढ़ेंगे खबर होने की बिना पर, या इस पर नसब पढ़ेंगे मफूल भी ही होने की बिना पर। और चौथी सूरत यह है कि इसको साकिन पढ़ें, न इस पर रफा पढ़ सकते हैं न नसब और न जर, यह उनवान है भाई, कोई तरकीब नहीं है, कोई तरकीब नहीं। आप रफा पढ़ना चाहते हैं? नहीं भाई रफा नहीं पढ़ सकते। रफा के लिए क्या चाहिए? आमिल चाहिए। आप नसब पढ़ना चाहते हैं, नसब भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि नसब के लिए आमिल चाहिए, और आप जर पढ़ना चाहते हैं, जर भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि जर के लिए आमिल चाहिए। तो इसको साकिन पढ़ें भाई, मबनी अल सुकून पढ़ें, तो क्योंकि ये उनवान है, कोई तरकीब नहीं। जब तरकीब नहीं तो इस पर ना रफा आ सकता है, ना नसब और ना जर। तो कितनी किस्म का इराब इस पर आ सकता है? तीन किस्म पर, या रफा, रफा मुब्तदा होने की बिना पर, या रफा खबर होने की बिना पर, या नसब मफूल बिही होने की बुनियाद पर। और चौथी सूरत यह है कि कोई तरकीब नहीं, यह उनवान है भाई, तो इस सूरत में ना इस पर फिर रफा पढ़ सकते हैं, ना नसब और ना जर। और मैंने यह बतलाया कि जर इस पर नहीं आ सकता, आप इसको मजरूर होने की बिना पर अल मरफूआती पढ़ लें, यह नहीं पढ़ सकते। बात समझ में आ गई, ये याद रखना भाई, क्योंकि बास शारहीन ने यहां लिखा है कि या तो ये मजरूर है, क्या है? मजरूर है। नहीं भाई, ये मजरूर नहीं है। हां, जब आप बहसुल मरफूआत, बहस या बयान का लफ्ज मुजाफ महजूफ निकालेंगे तब ये मजरूर होगा, मुजाफिले हो जाएगा। लेकिन बहस और बयान का लफ्ज मौजूद है या हजफ है अल मरफूआत से पहले, बहस और बयान या जिक्र वगैरह का लफ्ज मौजूद है या महजूफ है? महजूफ है भाई। हां, आप उस महजूफ को जब निकालते हैं तब इस पर जर आता है, लेकिन जब वो हजफ कर दिया गया तो अब ये उसका कायम मकाम हो गया, तो उस सूरत में फिर इस पर रफा ही पढ़ेंगे भाई। बात समझ में आई? क्योंकि वो मुजाफ क्या था? मरफू, और उसको हजफ करके अल मरफूआत को उसका कायम मकाम बनाया, तो यह भी क्या हो जाएगा? मरफू। बात समझ में आ गई जी? अब देखिए आगे कहते हैं अल मरफूआतु जी, मतन मतन देखिए, अल मरफूआतु हुवा मश्तमला अला अलमिल फाइलिया, अल मरफूआत हुवा मश्तमला अला अलमिल फाइलियती, मरफू वो है मश्तमला जो मुश्तमिल होता है अला अलमिल फाइलियती, फाइल होने की अलामत पर। मरफू वो है जो फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल होता है। मरफू की तारीफ कर रहे हैं कि मरफू कहते किसको हैं, पहले यह तो समझ लो, फिर उसके बाद बाकी बहस उसके बाद जिक्र होगी। तो इन्होंने क्या बतलाया? मरफू किसे कहते हैं? हुआ मश्तमला अला अलमिल फाइलियति, मरफू वो है जो फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल हो, और फाइल की अलामत क्या है? रफा। फाइल की अलामत क्या है? रफा। और रफा के आने की कितनी सूरतें हैं? याद रखो, रफा के आने की तीन सूरतें हैं। कभी रफा जम्मा की सूरत में आता है, कभी रफा वाव की सूरत में आता है, और कभी रफा अलिफ की सूरत में आता है। मरफू किसे कहते हैं? जो फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल हो, और फाइल की अलामत रफा है, और रफा की कितनी सूरतें हैं? तीन सूरतें हैं, जम्मा, वाव और अलिफ। कभी कभार रफा जम्मा के साथ आएगा, जा अनी जैदुन। देखा, ये जैदुन पर क्या आ रहा है? रफा। और रफा किसके साथ है? जम्मा के साथ भाई, किसके साथ? जम्मा के साथ। कभी ये रफा वाव के साथ आता है, जा अनी मुस्लिमूना। देखो, ये मुस्लिमूना के अंदर ये वाव क्या है? रफा है भाई। ये बतला रहा है कि मुस्लिमूना इस वक्त हालत रफी में है, ये फाइल है जा के लिए, तवज्जो है। तो यहां रफा किसके साथ आया? वाव के साथ। जबकि मुस्लिमूना जो है हालत नस्बी जरी में कैसे पढ़ेंगे? मुस्लिमीना। कैसे पढ़ेंगे? तो मुस्लिमूना का रफा किसके साथ आता है? वाव के साथ। नसब और जर किसके साथ आते हैं? या के साथ। तो देखो, वाव भी रफा की अलामत है। इसी तरह अस्माए सित्ता, मुकब्बरा, मुआहदा, मुजाफा इला गैरिया इल मुतकल्लिम, जा अनी अबू का, रई तू अबा का, मरर तू भी अबी का। देखो, इसका रफा भी किसके साथ आया? वाव के साथ। नसब किसके साथ आया? अलिफ के साथ। और जर किसके साथ आया? या के साथ। और इसी तरह तस्निया है, जा अनी रजुलानी, रई तू रजुलैनी, मरर तू भी रजुलैनी। देखो, तस्निया का रफा किसके साथ आता है? अलिफ के साथ। और नसब और जर या के साथ। तवज्जो है। तो रफा कभी किसके साथ आएगा? जम्मा के साथ, जैसे जा अनी जैदुन। रफा कभी किसके साथ आएगा? वाव के साथ, जैसे जा अनी मुस्लिमूना या जा अनी अबू का। और कभी रफा किसके साथ आएगा? अलिफ के साथ, जैसे तस्निया है भाई, जा अनी रजुलानी। तो रफा की कितनी सूरतें? तीन, जम्मा, वाव और अलिफ भाई। तो मरफू किसे कहते हैं? जो फाइल होने की अलामत यानी रफा पर मुश्तमिल हो, यानी उसके आखिर में जम्मा हो या वाव हो या अलिफ हो। भाई तो कहते हैं अल मरफूआतु हुआ मश्तमला अला अलम अल फाइलियत, कि मरफू वो इसम है जो फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल हो, और फाइल होने की अलामत क्या है? रफा, और रफा की कितनी सूरतें हैं? तीन, जम्मा वाव और अलिफ। भाई अब देखिए भाई शरा के साथ, भाई अल मरफूआतु जमउल मरफूइल अल मरफूआति जी, अब लफ्ज मरफूआत की तहकीक कर रहे हैं साहिब जामी। अल मरफूआत देखो ये जमा मुअन्नस सालिम है, अलिफ ता के साथ है, और अल मरफूआत लफ्ज को देखते ही अव्वलन शुबा यह होता है कि यह शायद मरफूआतुन की जमा है, क्योंकि जमा मुअन्नस सालिम है ना, जैसे मुस्लिमतुन की जमा क्या आती है? मुस्लिमातुन, तो मुस्लिमातुन का मुफरद क्या? मुस्लिमतुन। तो यहां पर भी शुबा होता है कि अल मरफूआत ये तो जमा मुअन्नस सालिम है, मालूम हुआ ये मरफूआतुन की जमा है। तो साहिब जामी आपको बतलाएंगे नहीं भाई, ये मरफूआतुन की जमा नहीं है, ये मरफूउन की जमा है। किसकी? मरफूउन की जमा है। वजह यह कि यह बहस चल रही है इसम की। किसकी बहस चल रही है? इसम की बहस चल रही है कि वो इसम कभी मरफू होता है, कभी मंसूब होता है, और कभी मजरूर होता है। तो मालूम हुआ कि ये मरफूआत ये मरफूउन की जमा है, क्योंकि मरफूउन सिफत का सिगा है, और सिफत के सिगे के लिए मौसूफ चाहिए। भाई क्या चीज है जिसको रफा दिया गया है? क्या चीज मरफू है? तो इसका मौसूफ इसम है भाई, और इसम लफ्ज मुजक्कर है, तो इसकी सिफत मरफूउन आनी चाहिए या मरफूआतुन आनी चाहिए? मरफूउन आनी चाहिए। तो ये इसम की बहस चल रही है, और इसम मुजक्कर है तो इसकी सिफत मरफूउन है, और इस मरफूउन की जमा क्या आती है? मरफूआत आती है। इस पर शुबा पैदा होता है कि भाई मरफून मुजक्कर है और इसकी जमा तो मरफूउन आनी चाहिए ना कि मरफूआत आनी चाहिए, इसकी जमा तो वाव नून के साथ आनी चाहिए ना कि अलिफ ता के साथ। तो आपको साहिब जामी बतलाएंगे कि वो मुजक्कर जो गैर जवील उकूल में से हो, उनकी सिफत की जमा अरबी जुबान में कसरत के साथ अलिफ ता के साथ लाई जाती है, कि वो मुजक्कर जो किस में से हो? गैर जवील उकूल में से। गैर जवील उकूल, जवील उकूल जानते हो भाई, याद रखो जवील उकूल यानी अकल वाले जिनको अल्लाह ने अकल नसीब फरमाई है, वो तीन चीजें हैं, इंसान जिन्नात और फरिश्ते। इंसान जिन्नात और फरिश्ते ये जवील उकूल में से हैं, और बाकी चीजें क्या हैं? गैर जवील उकूल में से। तो साहिब जामी आपको बतलाएंगे कि वो मुजक्कर जो गैर जवील उकूल में से हो, उसकी सिफत की जमा अलिफ ता के साथ अरबी जुबान में कसरत के साथ लाई जाती है, कसरत के साथ इस्तेमाल की जाती है। किसकी जमा? वो मुजक्कर जो किस में से हो? गैर जवील उकूल में से हो। उसकी जो सिफत है उस वो मुजक्कर नहीं, उसकी सिफत जो है, उसकी सिफत की जमा अलिफ ता के साथ अरबी जुबान में आम तौर पर लाई जाती है। तो अल मरफूआत किसकी जमा? अभी बताया मरफूउन की जमा, और मरफूउन किसकी सिफत है? इसम की सिफत है, और इसम जवील उकूल में से है या गैर जवील उकूल में से? गैर जवील उकूल में से। तो इसम जो है ये गैर जवील उकूल में से है और मुजक्कर है भाई, तो वो मुजक्कर जो गैर जवील उकूल में से हो, उसकी जो सिफत है यानी जैसे यहां मरफूउन है, उसकी सिफत की जमा अलिफ ता के साथ आम लाई जाती है, कसरत के साथ लाई जाती है। तो ये मरफून सिफत है किसकी? इस्म उनकी। और इसम क्या है? वो मुजक्कर है जो गैर जवील उकूल में से है, तो इसकी सिफत मरफून जो है उसकी जमा अलिफ ता के साथ इसलिए लाई गई। बात समझ में आ गई? देखिए भाई किताब पर कहते हैं जमउल मरफूइल अल मरफूआती, की जो मरफूआत है यह मरफूउन की जमा है, मरफूआतुन की जमा नहीं। लिअन्ना मौसूफहुल इस्म, इसलिए क्योंकि इसका मौसूफ इसम है। वह हुआ मुजक्करुल ला याकिलु, और वो ऐसा मुजक्कर है जो ला याकिल है, जो अकल नहीं रखता, यानी गैर जवील उकूल में से है।
وَيُجْمَعُ هَذَا الْجَمْعَ مُطَّرِدًا, और जमा लाई जाती है हादल जमा, ये हाजल जमा, इसको मंसूब पढ़ना, हाजा मौसूफ अल जमा सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर ये मफूल मुतलक हुआ युजमाऊ के लिए, और मफूल मुतलक क्या होता है, मंसूब होता है, और जमा लाई जाती है ये वाली जमा, कौन सी ये नौ के लिए है, आपने पढ़ा है जलस तो जिल सतल कारी, मैं किसकी तरह बैठा, कारी की तरह बैठा, तो यहां पर भी ये जो हाजल जमा आया ये मफूल मुतलक है, और ये नौ बयान कर रहा है, किस्म बयान कर रहा है कि वह युजमाऊ हाजल जमा, इस किस्म वाली जमा लाई जाती है, कौन सी किस्म वाली, अलिफ्ता के साथ, कौन सी ये वाली किस्म वाली जमा लाई जाती है, मुतरिदन, तो ये मुतरिदन ये तमीज है और तमीज मंसूब होती है, और आगे जो सिफतुल मुजक्कर आ रहा है याद रखो ये नाइबुल फाइल है युजमाऊ के लिए, युजमाऊ फेले मजहूल है, फेले मजहूल के लिए क्या चाहिए, नाइब फाइल चाहिए, तो युजमाऊ फेले मजहूल हादल जमा, ये इसके लिए मफूल मुतलक, और मुतरिदन है तमीज, और सिफतुल मुजक्कर ये नाइबुल फाइल है युजमाऊ के लिए, बात समझ में आ गई, तो मैंने क्या बताया कि हाजल जमा ये मफूल मुतलक है और मुतरिदान तमीज है, किससे तमीज है, ये जो युजमाऊ की निस्बत की जा रही है सिफतुल मुजक्कर की तरफ नाइब फाइल की तरफ, ये जो फेल की निस्बत की जा रही है नाइब फाइल की तरफ, इस निस्बत में इबहाम था कि ये जमा कसरत से लाई जाती है या कभी कभार लाई जाती है, तो मुतरिदन लाकर साहिब जामी ने उस इबहाम को दूर कर दिया कि इस सिफत की ये वाली जमा कसरत के साथ अरबी जुबान में लाई जाती है।
अच्छा तो भाई मैंने आपको तरकीब बतलाई, व युजमाउ हादल जमा मुतरिदन सिफतुल मुजक्कर अल्लज़ी ला याकिलु, पहली तरकीब क्या, व युजमाउ हाजल जमा, ये हाजल जमा को क्या बनाया, मफूल मुतलक बनाया युजमाउ फेल मजहूल के लिए, जबकि बास शारहीन ने इसको मनसूब बिनज़ल खाफिज बनाया है, ये हाजल जमा को क्या बनाया है, मनसूब बिनज़ल खाफिज, इसको भी समझ लें भाई, खफ्ज खा फा और ज़ाद, भाई खफ्ज खफ्ज जर को कहते हैं, किसको कहते हैं, जर, तो कलाम अरब में कभी कभार ऐसा करते हैं कि एक लफ्ज मजरूर होता है उस पर हर्फ जर दाखिल होता है, तो फिर इसमें से हर्फ जर को हजफ कर लिया जाता है और उस लफ्ज पर नसब पढ़ दिया जाता है, इसको कहते हैं मंसूब बिनज़ल खाफिज, नज़ुन का माना खींच लेना हटा देना, और खाफिज क्या माना, जर देने वाला, यानी वो जो हर्फ जर है, वो जो जर देने वाला हर्फ है उसको क्या कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है और फिर उस पर नसब पढ़ लिया जाता है, तो वह युजमाउ हाजल जमा, तो ये जो हाजल जमा इस पहली तरकीब के मुताबिक इसको क्या पढ़ा आपने, मफूल मुतलक बनाया भाई, कि यह नौ बयान कर रहा है, मफूल मुतलक है युजमाउ फेल से, दूसरी तरकीब यह कि यह मनसूब है बिनज़ल खाफिज, असल में था व युजमाउ अला हाजल जमाई, तवज्जो है, व युजमाउ अला हाजल जमाई, अला जारा हाजा मजरूर मौसूफ और अल जमाई उसकी सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर मजरूर हुए अला जारा के लिए, तवज्जो है, फिर क्या किया गया, अला जारा को हजफ कर लिया गया, इसको कहते हैं नज़ुल खाफिज, यानी जर देने वाले हर्फ को हटा दिया खत्म कर दिया और फिर इस पर क्या पढ़ दिया नसब, तो दूसरी तरकीब क्या, वयुजमाउ हादल जमा ये मनसूब बिनज़ुल खाफिज है, असल में क्या था वयुजमाउ अला हाजल जमाई, फिर अला को हजफ कर लिया गया, खाफिज जो जर देने वाला अला था उसको हजफ कर लिया गया और हाजल जमा पर नसब पढ़ दिया गया, बात समझ में आ गई, तो पहली तरकीब क्या हाजल जमा मफूल मुतलक, दूसरी तरकीब क्या मनसूब बिनज़ल खाफिज, मनसूब बिनज़ल खाफिज किसे कहते हैं कि हर्फ जर को हजफ करके वो जो मजरूर था उस पर क्या पढ़ दिया जाए नसब पढ़ दिया जाए, इसको कहते हैं मंसूब बिनज़इल हाफिज। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वयुजमाउ हादल जमा मुत्तरिदन, और ये वाली जमा कसरत से लाई जाती है। सिफतुल मुजक्कर अल्लदी, उस मुजक्कर की सिफत। अल्लदी ला याकिलु, जो अकल नहीं रखता, यानी जो गैर ज़विल उकूल में से है, तो वो मुजक्कर जो गैर ज़विल उकूल में से है उसकी सिफत की ये वाली जमा लाई जाती है कसरत के साथ। भाई यहां पर आया लिअन्ना मौसूफा, इसको कैसे पढ़ेंगे जरा पढ़ें भाई। उमूमन तुलबा इसको पढ़ते हैं लिअन्ना मौसूफा हुल इस्म, तवज्जो है इसमें, देखो इसम के हमजा को पढ़ते हैं। जब भी इसम लफ्ज पर अलिफ लाम आ जाए तो ये आम राइज गलती है कि इसम के हमजा को पढ़ा जाता है, हालांकि इसम का हमजा वसली है और हमजा वसली को दर्जे इबारत में पढ़ना गलती है भाई, ये गलत है, दुरुस्त नहीं है। तो ये हमजा नहीं पढ़ेंगे भाई, फिर कैसे पढ़ेंगे, तरीका क्या भाई? देखो तरीका सुनो, इसम था, इसम लफ्ज, इसम का हमजा क्या है, वसली, इस पर अलिफ लाम ले आए तो अब इसम का हमजा गिर गया, तो इसम का सीन भी साकिन और अलिफ लाम का लाम भी साकिन, दो साकिन इकट्ठे हो गए भाई। जब दो साकिन जमा हो गए इसको कहते हैं इज्तिमाई साकिनैन, और इज्तिमाई साकिनैन दो किस्म पर है, एक आला हद्दी ही है और एक आला गैरी हद्दी ही है। आला हद्दी ही हो तो उसको पढ़ सकते हैं, वो अरबी जुबान में उसी तरह इस्तेमाल होता है, दोनों साकिन रहते हैं। इज्तिमाई साकिनैन आला हद्दी ही यह है कि अव्वल साकिन हरफे मद्दा हो, यानी वो अलिफ या हो और माकबल की हरकत उनके मुआफिक हो, और सानी साकिन मुदगम हो, जैसे मादतुन, जैसे मादतुन में अलिफ भी साकिन और अलिफ के बाद जो दाल है वो मुशद्दद है, और वो दरअसल कितने दाल हैं, हकीकत में दो हैं, और उन दो में से पहला दाल जो है वो साकिन है, तो अलिफ भी साकिन और उसके बाद पहला दाल भी साकिन, तो ये इज्तिमाई साकिनैन है, लेकिन ये आला हद्दी ही है, इसको पढ़ना जायज है, इसको इसी तरह पढ़ेंगे। तो इज्तिमाई साकिनैन आला हद्दी ही किसे कहते हैं, अव्वल साकिन हरफे मद्दा हो और सानी साकिन मुदगम हो भाई, तो इसको इसी तरह बरकरार रखेंगे, जबकि इसके अलावा बाकी जितनी सूरतें हैं वो इज्तिमाई साकिनैन आला गैरी हद्दी ही की हैं, और इज्तिमाई साकिनैन आला गैरी हद्दी ही के अंदर जब दो साकिन इकट्ठे हो गए तो अगर अव्वल हरफे मद्दा हो तो उसको गिरा देते हैं, और अगर अव्वल साकिन हरफे मद्दा ना हो तो फिर उसको हरकत देते हैं, और कौन सी हरकत, असाकिन इजा हुर्रिका, हुर्रिका बिल कसर, उसको कसरा वाली हरकत उमूमन देते हैं। तो यहां पर भी बात क्या चल रही थी, इसम, इसम पर क्या ले आए, अलिफ लाम, अब अलिफ लाम के अंदर लाम भी साकिन और इसम के अंदर हमजा गिर गया तो सीन भी साकिन, तो इज्तिमाई साकिनैन आया, और ये इज्तिमाई साकिनैन आला हद्दी ही है या आला गैरी हद्दी ही, आला गैरी हद्दी ही है, तो इस सूरत में अव्वल अगर मद्दा हो तो उसको हजफ करते हैं, लेकिन यहां तो अव्वल लाम है, वो तो हरफ मद्दा नहीं, तो फिर इस सूरत में अव्वल को कसरा वाली हरकत देते हैं, तो लाम को कसरा वाली हरकत देंगे, कैसे पढ़ेंगे, अलिस्म, अलिस्म, तवज्जो है। अब इसके ऊपर अलिस्म के ऊपर कोई भी लफ्ज जब आप दाखिल करेंगे तो आप उसको कैसे पढ़ना है, ये मुश्किल काम है, इसको समझ लें। मसलन, मसलन इस अलिस्म के ऊपर अगर मीन लफ्ज आ जाए, क्या आ जाए, मीन लफ्ज आ जाए, मीन और आगे है अल इसम, अब अल इसम के अंदर भी जो हमजा है अलिफ्लाम का हमजा वसली है वो भी गिर जाएगा, अब मीन का नून भी साकिन आगे लाम भी साकिन, आप कहेंगे भाई लाम के नीचे तो हरकत है इस वक्त, अलिस्म लाम के नीचे क्या है, हरकत, भाई ये हरकत मुस्तकिल हरकत है या आर्जी तौर पर आई है, ये आर्जी हरकत है, ये कौन सी हरकत है भाई, अल्लामे तारीफ साकिन होता है या उसके नीचे कसरा होता है, लामे तारीफ तो साकिन होता है, तो ये जो कसरा पढ़ रहे हैं अलिस्म, ये लाम के नीचे जो कसरा है ये आर्जी है, ये इज्तिमाई साकिनैन की वजह से आप पढ़ रहे हैं, तवज्जो है। अब इस पर क्या लफ्ज आया, मिन, और मीन का नून साकिन और आगे लाम के नीचे इस वक्त बेशक कसरा है लेकिन असल में ये लाम क्या है, साकिन है, ये कसरा आर्जी है मुस्तकिल नहीं, तो गोया लाम अभी भी साकिन है, तवज्जो है। लाम के नीचे आप पढ़ तो कसरा ही रहे हैं लेकिन फर्ज कर लो ये अभी भी क्या है, साकिन है, तो नून भी साकिन और लाम भी साकिन, तो अगर लाम आगे साकिन हो और उसके साथ मीन को मिलाना पड़े तो कैसे पढ़ेंगे? मीनल। कैसे पढ़ते हैं? मीनल पढ़ते हैं। मालूम हुआ नून पर फतहा आ जाता है, नून पर फतहा आ जाता है, तो आप इस नून पर फतहा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? मीनल इस्मी। नहीं नहीं, आम तलबा इसी तरह पढ़ते हैं, मीनल इस्मी। नहीं भाई, लाम के नीचे वो पढ़ना वो कसरा ही है, आपने सिर्फ जोड़ने के लिए आपने लाम को जरा साकिन थोड़ी देर के लिए फर्ज किया था कि लाम क्या है, लफ्ज क्या था, इसम। इसम पर क्या आया? अलिफ लाम। अब कैसे पढ़ेंगे? अलिस्म। लाम के नीचे जेर पढ़ो, अलिस्म। लाम के नीचे क्या पढ़ना है? जेर। अब याद रखना इस लाम के नीचे जेर ही पढ़ना है हर हाल में। हां, किसी और लफ्ज को इसके साथ जोड़ना कैसे है, तो जब जोड़ने लगे तो लाम के नीचे कसरा है, लेकिन फिलहाल इस लाम को साकिन फर्ज कर लो, क्योंकि ये आरजी हरकत है, लाम की हरकत आरजी, तो लाम को साकिन फर्ज किया। इसके साथ मीन को जोड़ो, कैसे पढ़ेंगे? मीनल, मीनल। बात समझ में आ गई? बस मीनल पढ़ के आपको पता चल गया मीन को जोड़ते कैसे हैं। नून पर क्या पढ़ देते हैं? जबर पढ़ते हैं। तवज्जो है, जबर पढ़ते हैं। अब नून पर जबर पढ़ना है और लाम पर वही कसरा पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे? मीनल नहीं, मीना लिस्मी, मीना लिस्मी। तवज्जो है, मीना लिस्मी। तरीका समझ में आया? अब मसलन मैं यहां ले आता हूं फी। क्या ले आया? फी। अब फी कैसे मिलाएंगे अलिस्म के साथ? देखो अलिस्म में लाम के नीचे क्या है? कसरा, लेकिन ये कसरा आरजी है, इसको साकिन ही फर्ज करो और इसके साथ फी जरा जोड़ो। फी के बाद अगर लाम में साकिन आए कैसे जोड़ते हैं? फेल। कैसे पढ़ते हैं? फेल। क्यों? क्योंकि फी की या भी साकिन थी और आगे लाम भी साकिन, तो इज्तिमाई साकिनैन आया, और इज्तिमाई साकिनैन में अव्वल अगर मद्दा हो तो उसको गिरा देते हैं, और फी के अंदर या मद्दा है क्योंकि या से माकबल कसरा है, वाव से माकबल जम्मा हो तो वो मद्दा कहलाता है, या से माकबल कसरा हो तो वो मद्दा कहलाती है, और अलिफ हमेशा मद्दा ही होता है क्योंकि अलिफ से कबल हमेशा फतहा आता है, तो फी के अंदर ये या कौन सी है? मद्दा। तो आगे लाम आया, लाम आया तो फी की या भी साकिन, आगे लाम भी साकिन, तो इज्तिमाई साकिन है आला गैरी हद ही आया, तो अव्वल हरफे मद्दा है या, उसको गिरा दिया, कैसे पढ़ेंगे? फिल। कैसे पढ़ेंगे? फिल। मालूम हुआ कि इस फी को अलिफ लाम के साथ जोड़ते वक्त इस फा के नीचे सिर्फ जेर पढ़ते हैं या गिर जाती है। फिल या पढ़ रहा हूं मैं कि या गिर चुकी है? फिल पढ़ रहा हूं या फील पढ़ रहा हूं? फिल पढ़ रहा हूं, या गिर चुकी है, तो बस अब वो या गिर गई और फा के नीचे सिर्फ जेर रह गई, फा के नीचे। अब अल इस्म के साथ जोड़ो इसको, लिस्म। लिस्म के लाम के नीचे जेरी पढ़ना है हर हाल में, उसको नहीं बदलना, फे लिस्म यूं पढ़ेंगे, फे लिस्म, फे लिस्म। देखो तेज पढ़ोगे आपको पता ही नहीं चलेगा, फिलिस्म, फिलिस्म। तरीका समझ में आ रहा है? और कोई लफ्ज ले आओ, अला को ले आओ जरा अलिस्म पर, कैसे पढ़ेंगे? अला। अलिस्म के लाम के नीचे क्या है? जेर। यह आरजी हरकत है या मुस्तकिल है? आरजी है, तो फिलहाल लाम को साकिन फर्ज करो और जरा अला को जोड़ो, कैसे पढ़ेंगे? अला को लाम साकिन के साथ जोड़ो आगे, अलल। अलल असल में क्या था? अला। देखो आखिर में अलिफ था और आगे लाम साकिन था, अलिफ भी साकिन, लाम भी साकिन, इज्तिमाई साकिन है नया, तो अव्वल हरफे मद्दा हो तो उसको गिराते हैं, तो अलिफ गिर गया, तो क्या पढ़ा? अलल। मालूम हुआ जब अला को अलिफ लाम के साथ जोड़ते हैं तो लाम पर सिर्फ जबर पढ़ते हैं, आगे अलिफ गिर जाता है, तो अब इसको अलिस्म के साथ जोड़ो, लाम के नीचे उसी तरह कसरा पढ़ना है, अलिस्म के लाम के नीचे उसी तरह कसरा पढ़ना है, आला लिस्म, आला लिस्म। तेज पढ़ें, अलल इस्मी, अलल इस्मी, अलल इस्मी। सुनने वाला समझता है शायद आप अलल इस्मी पढ़ रहे हैं, हालांकि नहीं, अलल इस्मी। तरीका समझ में आ रहा है? यहां आप कैसे पढ़ेंगे? किताब पर देखिए, लिअन्ना मौसूफहु अलिस्म जी, अब जोड़ें इनको, हां, लिअन्ना मौसूफहु लिस्म, लिअन्ना मौसूफहु लिस्म, लाम के नीचे जेर पढ़ेंगे। भाई याद रखो इसको कैसे पढ़ेंगे ये भी समझ लो, भाई ये जो वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर होती है, मिनहू, मिनहू के साथ कौन सी जमीर जुड़ी हुई है? वाहिद मुजक्कर गायब, फीही, इस फीही के साथ कौन सी जमीर जुड़ी हुई है, वाहिद मुजक्कर गायब। याद रखो ये जो वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर है, जब ये किसी इसम के साथ जुड़े या फेल के साथ जुड़े या हर्फ के साथ जुड़े, इस पर कभी जम्मा पढ़ते हैं और कभी इस पर कसरा पढ़ते हैं। मीन हु, मैंने क्या पढ़ा हा पर, जम्मा। फी ही, मैंने हा पर क्या पढ़ा, कसरा। तो ये जो वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर है, इस पर कभी जम्मा पढ़ते हैं और कभी कसरा पढ़ते हैं। फिर याद रखो, इसकी कभी हरकत को खींच कर थोड़ा लंबा कर देते हैं, इसको कहते हैं इशबाग। अशबा युशबिओ इशबाग भाई। जैसे देखो, मिनहु मिनहु जैदुन, मिनहु तवज्जो है, मिनहु जैदुन, ये यूं कहें फीही जैदुन। फीही ये हा को मैं लंबा कर रहा हूं, फीही जैदुन, देखो हा को मैं लंबा नहीं कर रहा, ये जो जमीर है। और अगर इसके बजाय ये लफ्ज होता फी दारी ही जैदुन, फी दारी ही जैदुन, अब मैं हा को लंबा कर रहा हूं, तवज्जो है। तो ये जो हा है, ये जो वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर है, इस पर कभी जम्मा पढ़ते हैं, कभी कसरा पढ़ते हैं, और कभी इसकी हरकत को खींच कर थोड़ा लंबा कर देते हैं, इसको कहते हैं इशबा भाई। अशबा युशबिउ इशबा का माना होता है हरकत को खींच कर लंबा कर देना, जिससे मद्दा बन जाए। हरकत को खींच कर लंबा कर देना जिससे मद्दा बन जाए, जैसे फी दारी ही जैदुन। अब ये फी दारी ही की हा को मैं लंबा कर रहा हूं, फी दारी ही जैदुन। अब ये कहां पर इशबा करते हैं इस जमीर के अंदर और कहां इशबा नहीं करते, जाबता याद रखना। ये जो वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर है, अगर इससे माकबल वाले हर्फ पर कोई हरकत हो तो फिर इसमें इशबा करेंगे और इसको लंबा करेंगे, और अगर इससे माकबल वाला हर्फ साकिन हो तो फिर इस पर इशबा नहीं करेंगे। बस जम्मा या कसरा तो पढ़ लेंगे लेकिन उसमें इशबा नहीं करेंगे। मिनहु, जी मिनहु, हा से कबल क्या, नून, और नून साकिन है, लिहाजा इशबा करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मिनहु जैदुन, मिनहु जैदुन। अच्छा, फीही, फीही हा से माकबल या मुतहर्रिक है, साकिन है, साकिन है, लिहाजा इशबा करेंगे या नहीं हा में, नहीं करेंगे। फीही जैदुन, फीही जैदुन, तवज्जो है। आप दूसरी मिसाल ले आए, फी दारी ही, जी हा जमीर से माकबल क्या, रा, और रा के नीचे हरकत है, रा मुतहर्रिक है, तो अब हा में इशबा करेंगे, फी दारी ही जैदुन, तवज्जो है। और मिसाल ले लें, जरबतुहू, जी जरबतुहू, हा से माकबल क्या, ता, और ता मुतहर्रिक है, साकिन है, मुतहर्रिक है, लिहाजा हा पर क्या करेंगे, इशबा। जरबतुहू, देखा यहां मैंने इशबा किया, जाब्ता समझ में आ गया। ये वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर, इस पर कभी जम्मा पढ़ते हैं और कभी कसरा पढ़ते हैं, और कभी इशबा करते हैं, कभी इशबा नहीं करते। इशबा कहां करेंगे, जब इसे माकबले वाले हर्फ पर हरकत हो, वो साकिन ना हो, और अगर माकबल वाला हर्फ साकिन हो फिर इस पर इशबा नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। फिर इस हा के मां बाद अगर अलिफ लाम आ जाए, कोई ऐसा लफ्ज आ जाए जिस पर अलिफ लाम हो, अगर माकबल में मुतहर्रिक है, तवज्जो है, माकबल में मुतहर्रिक है, वो क्या तकाजा कर रहा है, इस हा पर क्या करना चाहिए, इशबा करना चाहिए, लेकिन आगे अलिफ लाम आ गया और अलिफ लाम का हमजा तो वसली है, वो गिर जाता है, तो आगे गोया लाम साकिन आ गया, तो इस सूरत में भी इशबा नहीं करेंगे, इस सूरत में भी इशबा नहीं करेंगे। जैसे फी दारी ही, फी दारी ही, इस हा पर हम क्या कर रहे हैं, इशबा। आगे जरा अर रजुल ले आओ, अर रजुल का अलिफ हमजा तो गिर जाएगा, तो कैसे पढ़ेंगे, हां फी दारी हिर रजुल, फी दारी हिर रजुल, देखो हां को मैं लंबा नहीं कर रहा, फी दारी हिर रजुल हां को लंबा कर रहा हूं मैं, नहीं, जाब्ता समझ में आ गया कि अगर आगे अलिफ लाम आ जाएगा फिर भी इशबा नहीं करेंगे। अब यहां देखिए, लिअन्न मौसूफहु अलिस्म, अलिस्म अलिस्म में तो मैंने आपको बता दिया कि यह लाम के नीचे क्या पढ़ना है, कसरा पढ़ना है, और यह कसरा आरजी है और आरजी हरकत का कोई एतबार नहीं, तो यूं समझो यह लाम अभी भी साकिन है, लाम के नीचे पढ़ना कसरा ही है, लेकिन माकबल से मिलाने के लिए यूं समझें गोया के लाम क्या है, साकिन, और पीछे क्या है, लि अन्न मौसूफहु, इशबा करेंगे या नहीं करेंगे, इशबा करेंगे क्योंकि हा से माकबल फा पर जबर है भाई जी, तो इशबा करेंगे, इशबा करना है और आगे अलिफ्लाम आ गया, जब अलिफ्लाम आ गया है तो फिर इशबा नहीं करते, जाब्ता समझ में आ गया। आप कैसे पढ़ेंगे, हां लाम के नीचे जेर ही पढ़नी है, उसको नहीं बदलना, हां ले अन्न मौसूफहु लिस्म, ले अन्न मौसूफहु लिस्म, यूं नहीं पढ़ना लि अन्न मौसूफहु लिस्म, नहीं नहीं, ये तो आप इशबा कर रहे हैं, सिर्फ हा पर पेश पढ़ें, ले अन्न मौसूफहु लिस्म, ले अन्न मौसूफहु लिस्म, तरीका समझ में आ गया। तो कहते हैं अल मरफूआत जम उल मरफूल अल मरफूआती, मरफूआत जो है मरफू उनकी जमा है न के मरफूआत उनकी, ले अन्न मौसूफहु लिस्म, इसलिए क्योंकि इसका मौसूफ इसम है, वह मुजक्कर लायाकिलु और वह मुजक्कर लायाकिल है, वह युजमउ हादल जम मुत्तरिदन, और ये वाली जमा जो है कसरत से लाई जाती है, सिफतुल मुजक्कर अल्लज़ी ला याकिलु, उस मुजक्कर की सिफत की जो ला याकिल हो, का साफिनात लिदुकूर मिनल खैल, आगे साहिब जामी नजीर जिक्र कर रहे हैं, क्या जिक्र कर रहे हैं, नजीर जिक्र कर रहे हैं, एक होती है मिसाल एक होती है नजीर भाई, नजीर ज़ा के साथ है भाई, तवाज़ा तवज्जो है, याद रखो नजीर लाई जाती है कानून और जाबते के इस बात के लिए, उसको साबित करने के लिए, और मिसाल लाई जाती है कायदे की वजाहत के लिए, फर्क समझ में आया, नजीर किस लिए लाई जाती है, कायदे को साबित करने के लिए, और मिसाल लाई जाती है कायदे की वजाहत के लिए, मसलन आपको मैं बतलाता हूं, अल्फाइल मरफून फाइल मरफू होता है, ये कानून है जाबता है, तो अब मैं उसके लिए कदीम जो अरब का कलाम था, जो अरब फसीह बलिग शायरों का कलाम था, उसमें से मैं कोई मिसाल लाऊंगा जिसमें फाइल मरफू होगा, तवज्जो है, मैं जाबता क्या जिक्र करता हूं, अल्फाइल मरफून, तो मैं उस कदीम शायरों का जो कलाम है जिससे अरबी जुबान के कवानीन जिनसे अखज किए जाते हैं और जिनको दलील के तौर पर पेश किया जाता है, तो वहां से मैं एक इबारत लेकर आऊंगा कि देखो इस शेर के अंदर शायर ने फाइल पर रफा पड़ा है, यह दलील है कि कलाम अरब के अंदर फाइल क्या होता है, मरफू, तो इससे देखो जाबते का इस बात हो गया, ये दलील बन गई, जाब्ते के लिए क्या बन गई, दलील बन गई, और मिसाल जाब्ते की वजाहत के लिए होती है, मसलन मैं आपको कहता हूं कि फाइल मरफू होता है, जैसे जाआ जैदुन, जाआ देखा जैदुन पर क्या पढ़ा मैंने, रफा, और ये मैंने कोई कदीम कलाम अरब जिक्र किया या अपने से एक मिसाल बनाकर पेश कर दी, अपने से एक मिसाल बनाकर पेश कर दी, तो ये मिसाल तो है नजीर नहीं, क्योंकि मेरा कलाम तो दलील नहीं बन सकता भाई इस जाब्ते के लिए, इसके लिए किसका कलाम हमें चाहिए, अरब का, और अरब भी आजकल के अरब का कलाम भी दलील नहीं बना सकते, वो जो फसीह बलीग अरब शुआरा थे उनके कलाम को बतौर दलील के पेश किया जाता है, ये जो अइम्मा नहव हैं, इमाम सीबवे इमाम मखफश वगैरह जितने बड़े बड़े नहवी हजरात हैं, ये सारे जाब्ते और कवानीन उन्होंने वो फसीह व बलीग अरब जो थे उनके कलाम से अखज करते हुए बनाए, और ये उन दलील के तौर पर उनके कलाम को फिर जिक्र करते हैं कि देखो ये फला फसीह व बलीग शायर है, उसने अपने शेर के अंदर जो है फाइल पर रफा पड़ा है, फला शायर है उसने रफा पड़ा है, फला शायर है उसने फाइल पर रफा पड़ा है। यह दलील है कि फाइल क्या होता है, मरफू होता है। बात समझ में आ गई। तो नजीर किस लिए लाई जाती है, कायदे के इस बात के लिए, और मिसाल किस लिए लाई जाती है, कायदे की वजाहत के लिए। तो यहां से अब साहिब जामीन नजीरें पेश कर रहे हैं कुछ पे इस कायदे के इस बात के लिए, और यह ऐसा जाब्ता नहीं जिसके लिए कदीम अरब के अशार बतौर नजीर पेश करना पड़े, बल्कि इस जाब्ते के इस बात के लिए कलाम अरब से कुछ इसी किस्म की जमे जिक्र कर देंगे जो नजीर भी होंगी और मिसाल भी होंगी। बात समझ में आ गई कि जैसे देखो का साफीनाति लिदुकूरी मिनल खैली, खैल याद रखो घोड़ों की जमात को कहते हैं, का साफीनाति लिदुकूरी मिनल खैली, साफीनात जमा है साफिन की, साफिन, और साफिन सिफत है मुजक्कर घोड़े की, किसकी, मुजक्कर घोड़े की। तो देखो मुजक्कर घोड़ा है, और यह जविल उकूल में से है या गैर जविल उकूल में से, गैर जविल उकूल में से, तो इस साफिन की जमा साफिनात आती है। क्या आती है, यह अरबी कलाम में साफिनात इस्तेमाल होती है। तो ये मुजक्कर गैर याकिल की सिफत की जमा देखो अलिफ्ता के साथ आ गई। साफिन याद रखो उस घोड़े को कहते हैं जो जब खड़ा हो तो तीन कदम वो अपने पूरे जमीन पर रखता है और चौथे कदम को मोड़कर सिर्फ खुर का किनारा जमीन पर उसने रखा होता है, खुर का किनारा, चौथा कदम पूरा नहीं रखा होता बल्कि उसका किनारा रखता है। तो ये घोड़ों में उम्दा सिफत शुमार होती है कि वो इस अंदाज में खड़ा हो भाई, तो इस घोड़े को साफिन कहते हैं। और याद रखो अरबों के हां घोड़े सबसे कीमती माल में शुमार होते हैं, एक उनका कीमती माल ऊंट हैं और फिर दूसरे घोड़े, और घोड़े तो ऊंट से भी ज्यादा कीमती शुमार होते थे क्योंकि ऊंट तो उनके यहां बकसरत होते थे लेकिन घोड़े इतनी कसरत के साथ नहीं। और अरब जो थे वो जिस तरह अपना नसब और मुख्तलिफ कबीले वाले अपना अपना नसब याद रखते थे, तो वो इसी तरह जो उम्दा और आला नस्ल के घोड़े होते थे उनका भी वो नसब याद रखते थे कि ये फुला घोड़ा, ये फुला घोड़े का बच्चा है, वो उस घोड़े का बच्चा था, वो उस घोड़े का, वो उस घोड़े का, पूरा नसब याद रखते थे। तो जो आला नस्ल के घोड़े होते थे उनका मिलाप वो अदना नस्ल के घोड़ों से भी नहीं करते थे भाई, आला का मिलाप आला ही के साथ करते थे ताकि आला से आला और आला नस्ल पैदा हो भाई। चुनाचे आज भी दुनिया के अंदर अरब घोड़े मशहूर हैं भाई, अपनी सिफात और अपने कमालात की वजह से आज भी अरब घोड़े दुनिया में मशहूर हैं भाई। तो देखो यहां बात चल रही, यहां साफीनात आया, साफीनात, साफीनात जमा है साफिन की, साफिन, और साफिन सिफत है मुजक्कर घोड़े की। तो साफिन देखो मुजक्कर है भाई लेकिन इसकी जमा क्या आती है, साफिनात अलिफ्ता के साथ भाई। इसी तरह व जिमाल इन सिबहलात इन, जिमाल जमा है जमल की, जमल ऊंट को कहते हैं भाई, मुजक्कर ऊंट जो है, और मुअन्नस हो तो नाकतुन कहते हैं। तो इस जमल की सिफत आती है जमल उन सिबहलुन भाई, जो बड़े जिस्म वाला और मोटा ऊंट हो उसको क्या कहते हैं, जमालुन सिबहलुन। आप देखो ये सिबहलुन मुजक्कर ऊंट की सिफत है लेकिन इसकी जमा सिबहलात अलिफ्ता के साथ अरबी जुबान में इस्तेमाल होती है। और इसी तरह कल अय्यामिल खालियात भाई, अय्याम जमा है यौम की, और यौम की सिफत आती है खाली, क्या आती है, खाली यानी गुजरा हुआ, खला यखलू का क्या माना, गुजरा हुआ, तो यौमुन खालिन क्या माना, गुजश्ता दिन, गुजरा हुआ दिन, और इसी की जमा खालियात आती है, कल अय्यामिल खालियात यानी गुजश्ता अय्याम, गुजरे हुए दिन भाई। तो अब देखो खाली किसकी सिफत, यौम, और यौम मुजक्कर है भाई, और मुजक्कर जविल उकूल में से है या गैर जविल उकूल में से, गैर जविल उकूल में से, तो ये जो मुजक्कर है जो गैर जविल उकूल में से है इसकी सिफत की जमा खालियात अलिफ ता के साथ लाई गई। तो कहते हैं का साफीनाती लि दुकूरी मिनल खैली, जैसे कि साफीनात जो है मुजक्कर घोड़ों के लिए, खैल याद रखना ये एक घोड़े को नहीं कहते, घोड़ों की जमात को कहते हैं। व जिमाल इन सिबहलातिन, सिबहलातुन सीन के नीचे जेर पड़े और बा पर जबर है और हा साकिन है भाई। व जिमाल इन सिबहलातिन आई जख्मातिन, देखा जख्मातिन के साथ माना बयान कर रहे हैं सिबहलात का भाई। जख्मात जख्मुन ज़ाद खामीन, जख्मुन का माना है मोटा ताजा भाई, बड़े जिस्म वाला। तो कहते हैं वह जिमालिन सिबहलातिन ऐ जख्मातिन, यानी मोटे और बड़े जिस्म वाले। वकल अयामिल खालियाती, और जैसे कि अयामिल खालियात भाई, यानी गुजश्ता अयाम। तो ये कस साफिनाती लि दुकूरी, ये नजीर है, और नजीर किस लिए आती है, कायदे के इस बात के लिए। और हर नजीर याद रखो मिसाल भी होती है, क्या होती है, मिसाल भी होती है, अलबत्ता हर मिसाल वो नजीर नहीं होती। तो ये कस साफिनाती, तो साहिब जामी ने मिसालों के जरिए भी वजाहत कर दी इस जाब्ते की भाई। और इबारत जरा देखिए, कस साफिनाती लि दुकूरी मिनल खैली व जिमालिन सिबहलातिन, इस जिमालिन सिबहलातिन का आतफ किस पर किया, असाफिनात पर किया, और वो मजरूर था, उस पर काफ जारा दाखिल था, तो ये भी क्या है, जिमालिन सिबहलातिन ऐ जख्मातिन, इसको भी जर के साथ कसरा के साथ पढ़ेंगे। और आगे वकल अयामिल खालियाती, यहां पर काफ को जिक्र किया, इसका आतफ नहीं किया माकबल पर, हालांकि माकबल पर आतफ भी कर सकते थे, लेकिन साहिब जामी इस काफ को दोबारा ले आए यह बतलाने के लिए कि पहली दो मिसालों में और इस मिसाल में फर्क है। पहली दो जो मिसालें हैं उन चीजों की हैं जो जिस्म रखते हैं, जिनका जिस्म होता है, और अय्यामिल खालियात, अय्याम तो जमाने का नाम है, जमाने का कोई जिस्म नहीं होता, तो दोनों में फर्क है भाई, इसलिए वो काफ का लफ्ज दोबारा लेकर आए। यहां तक बात समझ में आ गई। अब सुनो भाई, साहिब जामी अल मरफूआत के बाद जम उल मरफू अल मरफूआ लाए, तवज्जो है, इस इबारत के लाने का मकसद क्या है, या तो इसका मकसद यह है कि वो लफ्ज़ मरफूआत की तहकीक करना चाहते हैं, वो शरा लिख रहे हैं और शारह का काम होता है मतन में कोई बात जिक्र हो तो उसकी तहकीक करें, उसकी शरा करें, तो मरफूआत का लफ्ज मतन में आया था, तो शारह जामी अब उसकी तहकीक करके आपको बतलाना चाहते हैं कि ये मरफूउन की जमा है, इसको मरफूआतुन की जमा ना समझना भाई, क्योंकि इसका मौसूफ इसम है भाई, मरफूउन का मौसूफ क्या है, इसम है। तो वो ये इबारत किस लिए लेकर आए, कि मतन की तहकीक करने के लिए, मतन में जो मरफूआत का लफ्ज आया था। लेकिन ज्यादा बेहतर तकरीर ये है, ज्यादा बेहतर तकरीर यूं की जाए भाई कि आगे मतन आ रहा है हुआ मश्तमला, हुआ मश्तमला, और इस हुआ जमीर को साहिब जामी, देखो इस हुआ के बाद आगे क्या आया, हुआ अयिल मरफू, कि हुआ जमीर किसको राजे है, मरफूउन को राजे है, तो आगे हुआ जमीर आ रही थी साहिब जामी, वो मरफूउन को राजे कर रहे हैं, तो इश्काल होता था कि पीछे तो मरफूउन का जिक्र नहीं है, तो साहिब जामी आपको बतलाना चाहते हैं कि पीछे मरफूआत का जिक्र आया था, और मरफूआत जमा है, और जमा के जिमन में मुफरद भी होता है, और वो मुफरद मरफूआतुन न समझना, बल्कि वो मुफरद क्या है, मरफूउन है, और यह हुआ जमीर उस मरफूउन को राजे है। तकरीर समझ में आई कि साहिब जामी ने जो कहा जम उल मरफूइल अल मरफूआती, या तो यह मरफूआत की तहकीक करना चाह रहे थे इसलिए यह इबारत लाए, लेकिन ज्यादा बेहतर यूं है कि यूं कहा जाए कि आगे हुआ जमीर आ रही थी और साहिब जामी उसको किसकी तरफ राजे करना चाहते हैं, मरफूउन की तरफ राजे करना चाहते हैं, तो किसी के जहन में इश्काल आ सकता है कि पीछे तो मरफूउन का जिक्र नहीं, पीछे तो मरफूआत का जिक्र है, और मरफूआत का मुफरत भी मरफूआतुन आता है, मरफूउन तो नहीं आता, तो साहिब जामी
जामी ने बतलाया नहीं नहीं भाई आप गलत समझ रहे हैं, मरफूआत का मुफरद मरफूआतुन नहीं है बल्कि मरफूउन है और यह जमीर हुआ उस मरफूउन को राजे है। बात समझ में आ गई। तो इसलिए साहिब जामी ये इबारत लाए कि जम उल मरफूई लल मरफूआती कि यह मरफूउन की जमा है मरफूआ की जमा नहीं और यह हुआ जमीर उसी मरफूउन को राजे है। तो गोया साहिब जामी ने यहां पर दो दावे कर दिए। तवज्जो से सुनो भाई, एक दावा क्या कि अल मरफूआत जम उल मरफूई मरफूआत मरफूउन की जमा है, दूसरा दावा क्या लल मरफूआती ये मरफूआतुन की जमा नहीं है। तवज्जो है, गोया साहिब जामी ने दो दावे कर दिए, एक दावा क्या कि मरफूआत मरफूउन की जमा है, दूसरा दावा क्या कि मरफूआतुन की जमा नहीं है। या यूं कह लो, बात को जरा मुख्तसर कर लो, दावा तो एक ही है, हां उस दावे के दो जूज हैं। साहिब जामी ने क्या दावा किया कि मरफूउन की जमा है मरफूआतुन की जमा नहीं, गोया दावे का एक जुज ईजाबी है एक सलबी है। ईजाब का क्या माना, इस बात जिसमें एक चीज का इस बात होता है, सलब का क्या माना जिसमें एक चीज की नफी होती है। तो दावा क्या साहिब जामी का कि ये मरफूउन की जमा है मरफूआतुन की जमा नहीं, तो ये उनका दावा है और इस दावे के दो जुज हैं, एक जुज ईजाबी है एक सलबी है। ईजाबी जुज कौन सा कि ये मरफूउन की जमा है, ये मरफूउन की जमा है, इसमें देखो नफी वाला कोई लफ्ज नहीं तो ईजाब है, और मरफूआतुन की जमा नहीं है देखो इसमें सल हरफे सलब आ रहा है इसमें नफी है एक चीज की, तो ये सलबी जुज हुआ दावे का। तो साहिब जामी का दावा क्या कि मरफूउन की जमा है मरफूआतुन की जमा नहीं, तो गोया इस दावे के दो जूस हो गए, एक ईजाबी जूस के मरफूउन की जमा है और एक सलबी जूस के मरफूआतुन की जमा नहीं। जब दो दावे किए हैं तो दावे के लिए दलील चाहिए भाई। तो साहिब जामी ने आगे दोनों की दलीलें जिक्र की, ईजाबी जूस की दलील भी जिक्र की और सलबी जूस की दलील भी जिक्र की। सलबी जूस क्या था कि ये मरफूआतुन की जमा नहीं है, उसकी दलील जिक्र की, लिअन्ना मौसूफहुल इस्म, इसलिए क्योंकि इसका मौसूफ क्या है इसम है, जब इसम मौसूफ मुजक्कर है तो उसकी सिफत मरफूउन है ना कि मरफूआतुन भाई। तो मरफूआतुन की जमा नहीं है, दलील क्या कि इसका मौसूफ क्या है, इसका मौसूफ इसम है भाई। ये बहस किसकी चल रही है, इसम की चल रही है और इसम तो मुजक्कर है भाई, तो उसकी सिफत क्या आनी चाहिए मरफूउन आनी चाहिए और फिर उस मरफूउन की जमा क्या है मरफूआत, तो इसका मौसूफ इसम है। ये कौन से जुज की दलील हुई, ये सलबी जुज की कि ये मरफूआतुन की जमा नहीं, क्यों, क्योंकि इसका मौसूफ इसम मुजक्कर है तो सिफत मरफूआतुन नहीं हो सकती। तो लिअन्ना मौसूफहुल इस्म, ये सलबी जुज की दलील हो गई, लल मरफूआती मरफूआ की जमा नहीं है, क्यों नहीं मरफूआ की जमा, लिअन्ना मौसूफहुल इस्म क्योंकि इसका मौसूफ क्या है इसम है, और पहला जुज क्या था ईजाबी था कि ये मरफूउन की जमा है, तो मरफूउन की जमा मरफूआत कैसे आ सकती है भाई, मरफूउन तो मुजक्कर है और मरफूआत तो जमा मुअन्नस सालिम है, तो उसका जवाब भी दिया। दूसरे दावे की दलील यहां से है, वह हुआ मुजक्करुल ला याकिलु कि ये इसम मुजक्कर ला याकिल है, वयुजमउ हादल जमा मुत्तरिदन सिफतुल मुजक्करिल लदी ला याकिलु कि इसम मुजक्कर ला याकिल है और मुजक्कर ला याकिल की सिफत की ये वाली जमा कसरत के साथ अरबी में आती है। बात समझ में आ गई जी। कितने दावे आप जरा दोहरा लें, यह दावे के कितने जूज, दो जूस, जम उल मरफूई ये ईजाबी जूस और लल मरफूआती ये सलबी जूस, और लिअन्ना मौसूफहुल इस्म ये किस जूस की दलील है, ये सलबी जूस लल मरफूआती की दलील है, और वह हुआ मुजक्करुल ला याकिलु ये किसकी दलील है, जम उल मरफू जो ईजाबी जूस था उसकी दलील है। बात समझ में आ गई अच्छी तरह। हासिल कलाम कि आज हमने अलमरफूआत की बहस शुरू की और सबसे पहले मैंने यह बतलाया कि साहिब काफिया ने अलमरफूआत को मुकदम किया मंसूबात और मजरूरात पर। वजह यह है कि मरफूआत कलाम में उम्दा वाके होते हैं और मंसूबात और मजरूरात कलाम में फजला वाके होते हैं, इसलिए इसको मुकदम किया। और उम्दा किसे कहते हैं, कलाम का बुनियादी और अहम जुज़ जिसको बगैर दलील के हजफ करना जायज न हो, और वह मुस्नद और मुस्नद इले हैं, जुमला इस्मिया के अंदर मुब्तदा और खबर और जुमला फेलिया के अंदर फेल और
फाइल या नाई फाइल भाई, ये क्या है? उम्दा है, इसलिए मरफूआत को मुकदम किया। और उम्दा को तो होना भी मुकदम चाहिए, इसलिए साहिब जामी ने भी उसकी वजह जिक्र नहीं की कि इस मरफूआत को क्यों मुकदम किया, क्योंकि मरफूआत मरफूआत क्या होते हैं? उम्दा, और उम्दा को होना भी मुकदम चाहिए और फजला को क्या होना चाहिए? मुअख्खर होना चाहिए। तो यह बात वाजह थी, इसलिए इसकी वजह जिक्र नहीं की। आगे चलकर वह मनसूबात और मजरूरात में बतलाते हैं कि मनसूबात को मजरूरात पर क्यों मुकदम किया, हालांकि दोनों फजला हैं। तो बतलाया चूंकि मनसूबात की तादाद ज्यादा है और मजरूरात की तादाद कम है, तो जिनकी तादाद ज्यादा थी, जिनमें बहस ज्यादा थी, उनको पहले जिक्र किया, और जिनकी बहस कम थी उनको बाद में जिक्र किया भाई। और फिर उसके बाद मैंने तरकीब बतलाई थी कि यहां पर अल मरफूआत पर रफा भी पढ़ सकते हैं और नसब भी, और इसको साकिन भी पढ़ सकते हैं बगैर किसी तरकीब के, यानी कोई तरकीब नहीं। मरफू पढ़ें उसमें दो तरकीबें हैं, या तो ये मरफू है मुब्तदा होने की बिना पर या खबर होने की बिना पर, और मंसूब पढ़ें तो यह फेल महजूफ के लिए मफूल बनेगा, इकरा अल मरफूआती। और उसके बाद फिर आगे अलमरफूआत की तहकीक की साहिब जामी ने, और आपको बतलाया कि मरफूआत मरफूउन की जमा है, मरफूआतुन की जमा नहीं, इसलिए क्योंकि इसका मौसूफ इसम है और इसम मुजक्कर है, तो उसकी सिफत मरफूउन आएगी, न के मरफूआतुन भाई। ये इसम की बहस चल रही है, और कौन से मरफूआत यहां मुराद हैं? जो इसम होते हैं, तो इसलिए मरफूउन की जमा है भाई। और फिर जाब्ता भी बताया कि हर मुजक्कर लायाकिल जो है उसकी सिफत की जमा अरबी जुबान में कसरत के साथ जो है वो अलिफ्ता के साथ आती है, जैसे जैसे साफिनात है भाई, ये मुजक्कर घोड़े की सिफत है लेकिन अलिफ्ता के साथ लाई गई। इसी तरह जिमालुन सिबहलातुन भाई, जिमाल जमल की जमा है, और जमल मुजक्कर ऊंट को कहते हैं, मुअन्नस मुअन्नस को तो नाकतुन कहते हैं। तो देखो जिमालुन सिबहलातुन अरबी में कहते हैं, तो मुजक्कर ऊंट की जो सिफत है उसकी जमा अलिफ्ता के साथ लाई गई। इसी तरह अल अयामिल खालियात जो है, इस अयामी ये तो यौम की जमा है, और यौम तो मुजक्कर है, और इसकी सिफत खाली जो है उसकी जमा अलिफ्ता के साथ लाई गई, क्योंकि ये सब क्या हैं? गैर जबील उकूल में से हैं, और हर वो मुजक्कर जो गैर जबील उकूल में से हो उसकी सिफत की जमा अलिफ्ता के साथ कलाम अरब में कसरत से लाई जाती है। बात समझ में आ गई। और फिर उसके बाद मैंने ये जिक्र किया कि जो साहिब जामी ने जमउल मरफू लल मरफूआती कहा, ये या तो मरफूआत की तहकीक करना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि यूं कहा जाए कि आगे हुआ जमीर को मरफूउन की तरफ राजे करना चाहते हैं, और पीछे तो मरफूउन का जिक्र नहीं, अलबत्त अलमरफूआत का जिक्र था, तो हुआ जमीर जब मरफूउन को राजे करेंगे तो किसी के जहन में शुबा आ सकता है कि पीछे तो मरफूउन का जिक्र नहीं है, मरफूआत का जिक्र है, और मरफूआत का मुफरत भी क्या आता है? मरफूआतुन आता है, तो पीछे तो न मरफूउन लफ्जन जिक्र है न जिमनन जिक्र है, तो उसकी तरफ आप कैसे राजे कर सकते हैं हुआ जमीर? तो जवाब दिया कि भाई ये जो मरफूआत है ये मरफूउन की जमा है, मरफूआतुन की जमा नहीं। और फिर ये चूंकि दावे के दो जूज थे, एक ईजाबी और सलबी, तो हर एक की दलील भी फिर उन्होंने जिक्र कर दी। बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।